आप सुन रहे हैं नवभारत कोड। बॉर्डर के उस पार चल रहे नगा मिलिटेंट के कैंप देश के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। उस खरपतवार को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय फौज को सीमा लांघनी पड़ी ताकि देश महफूज रहे। सन्नाटे को चीरते हुए, अंधेरे को हराते हुए, घने जंगलों के रास्ते जब फौज नागालैंड के बॉर्डर पार ऑपरेशन के लिए जा रही थी तो जवान गोली के निशाने पर थे। अगर उस वक्त पेड़ पर लटके प्लास्टिक के पैकेट को कैप्टन ने छू लिया होता तो लाश का गिरना तय था। मगर एक नगा लड़के ने जान बचा ली क्योंकि उसे मिलिटेंट कैंप की हर चाल का पता था। इस बारे में पूनम पांडे ने आर्मी में मेजर पद से रिटायर हुए अभय सप्रू से बात की। अभय उस वक्त कैप्टन थे। उन्होंने फौज के वो किस्से सुनाए जिनको सुनकर जिस्म में सनसनाहट होती है, बहादुरी का जज्बा जमा होता है।
मेरे 10 साल के एक्सपीरियंस में मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा कॉम्बैट या ऑपरेशन में ही निकला। मैंने ऑपरेशंस देखे हैं श्रीलंका में, ऑप बजरंग जो कि ऑपरेशन लॉन्च किया था फौज ने उल्फा के खिलाफ असम में, मैं उसमें पहुंचा था। उसके बाद मैं नॉर्थ ईस्ट पहुंचा फॉर ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन, और जो मैं आपसे बात करूंगा इसके बाद जो आपको मैं इंसिडेंट बताऊंगा वो नॉर्थ ईस्ट का ही है और एक ट्रांस बॉर्डर ऑपरेशन का है। और उसके बाद मैंने कई साल लगाए, 3.5 साल लगाए कश्मीर, और वो भी पीक टाइम में 95 to 97।
सर्जिकल स्ट्राइक, ये वो शब्द है जिसका जिक्र लोकसभा चुनाव में आपने खूब सुना होगा। मगर भारतीय फौज दुश्मनों को खत्म करने के लिए बहुत पहले से बॉर्डर पार जाती रही है। जवानों के हौसलों की दास्तान बहुत लंबी है। यहाँ बहादुरी का एक किस्सा 90 के दशक का सुनिए।
ये जो बॉर्डर क्रॉस करने का काम था ये फौज बहुत साल पहले से कर रही थी, और जो मैं आपको हादसा बता रहा हूँ ये 93 का है, और मुझसे पहले कर रहे थे लोग, मुझे इतना पता है। तो 93 में हमारी टीम भेजी गई वहां पे फॉर ट्रांसबॉर्डर ऑपरेशन, क्योंकि हमें पता लगा कि बांग्लादेश और बर्मा के अंदर डिपेंडिंग कितनी पीछे अलग अलग ग्रुप्स ने जो नॉर्थ ईस्ट में ऑपरेट करते थे, बोडोस के थे, नागास के थे, इनके अलग अलग कैंप चल रहे थे। और हमारे पास एक नागा लड़का पकड़ा गया जिसने ट्रेनिंग ली थी, जो NSCN का मेंबर था, नागा इंडिपेंडेंट आर्मी का, और जो उस कैंप में रह चुका था।
जिस नागा लड़के को पकड़ा था फौज उसको अपने साथ लेकर चली ताकि सीमा पार उस ठिकाने तक पहुंचा जा सके जहां पर उसके जैसे लड़ाकों को ट्रेनिंग दी जा रही थी, या ये कहिए कि बाकायदा एक फौज तैयार की जा रही थी ताकि भारतीय फौज से लड़ा जा सके। लड़के को लेकर भारतीय फौज के जवान उखरुल पहुंचे। ये वो इलाका था जिसे नगा अपनी राजधानी कहते हैं। ऑपरेशन के लिए जा रही टीम उखरुल से नीचे उतरी और वहां डोगरा बटालियन से अटैच हो गई।
4 बजे सुबह ये एक टीम हमारी, लगभग 50-60 लोग होंगे हम, और एक कंपनी डोगरा बटालियन की जो हमारे पीछे थी, हम लोग पोस्ट से निकले हैं और बॉर्डर की तरफ हमने मार्च किया। अब क्योंकि आप जानते हैं ब्रिगेडियर साहब को, नामबिहार साहब भी थे उसमें, नामबिहार साहब he was a young captain and I was the troop commander and Veenu was under me, और फिर एक टीम कमांडर था, एक और ट्रूप कमांडर था, और उसके नीचे एक और जूनियर ऑफिसर था।
ये वो लोग थे जिन्होंने टारगेट तक पहुंचने के लिए 35-36 घंटे तक मार्च किया। गर्मी इतनी थी कि प्यास से बुरा हाल होता था, नाले का पानी बहता था, मगर उसको पीना खुद को बीमार करना था। कमर पर बोझ लादे बॉर्डर तक पहुंचने में पसीने से तरबतर चले जा रहे हैं। चलना भी ऐसा कि चढ़ाई है क्योंकि बॉर्डर ऊंचाई पर था। जंगल इतने घने कि कुछ नहीं दिखता था, कब कहां से क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तभी खबर मिली कि कोई लड़की कमांडर है जो हमला करने वाली है।
यूशु लास्ट गांव था, कॉलम वहां पे पहुंचा है, और एक टीम दूसरी सिस्टर बटालियन SF की वो बॉर्डर पे बैठी हुई थी, उनके पास एक इंटरप्रेटर था और वो इंटरसेप्ट पकड़ रहे थे जो कॉन्वर्सेशन हो रही थी रेडियो पे नागास के अंदर, और वो हमें रिले कर रहे थे कि आपकी जो मूवमेंट है वो दिख गई है, और एक नागा टुकड़ी आपको एम्बुश करने वाली है, और उस टुकड़ी का कमांडर जो है वो कोई लड़की है, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, वो लड़की कमांडर है और वो आपको फ्रंट ट्रेलिंग कर रहे हैं, मतलब वो आपके आगे हैं और वो पीछे पीछे विड्रॉ करते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका एम्बुश होगा।
बेतहाशा गर्मी में जवान चढ़ाई कर रहे थे, तब गर्मी से निजात के लिए राहत बनकर बारिश की बूंदें तो बरसती लेकिन सारा सामान भी भीग जाता। चलते चलते शाम के 6 बज चुके थे, अंधेरा होने को था। बार बार सिस्टर बटालियन टीम को अलर्ट कर रही थी, गोली कभी भी चल सकती थी, एम्बुश हो सकता था, लेकिन मिलिटेंट पीछे जा रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था भारतीय फौज बॉर्डर से वापस लौट जाएगी, उसे क्रॉस नहीं करेगी।
बॉर्डर अभी भी पहाड़ के ऊपर रन कर रहा था, जो पिलर्स रन करते हैं ना, बॉर्डर के पिलर्स रन करते हैं, वो पहाड़ के ऊपर था। अंधेरा हो गया तो वहां पे कॉलम उस वक्त अंधेरे में टूट गया, बिकॉज इतना थिक जंगल था, कुछ नहीं दिख रहा था। तो एक अफसर और करीब 4 आदमी ये अंधेरे में आगे निकल गए, बाकी जो थे वो बहुत ही पतला ट्रैक चल रहा था जंगल के अंदर, वहां पे सबको बोला गया बैठ जाओ अभी, क्योंकि खबर आ रही है कि शायद फायर खुल सकता है। ये जो तीन चार आदमी थे एडवांस में, जो जिसको हम कहते हैं स्काउट, ये आगे निकल गए क्योंकि कॉलम टूट गया अंधेरे में, और इनका मुठभेड़ हो गया एक नागा पार्टी के साथ। तो जंगल में अंधेरे में सडनली फायर खुल गया, अभी किसी को नहीं दिख रहा है कहाँ फायर आ रहा है, लेकिन इतना पता लग रहा है कि किसी के ऊपर फायर खुल गया है अंधेरे में। जो एडवांस पार्टी रेडियो पे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं मेजर को, कैप्टन थे उस वक्त पानी मेजर पाने, जो एडवांस में आगे निकल गए थे, तो कोई मिलाप नहीं हो रहा है बिकॉज कम्युनिकेशन वो पहाड़ी इलाके में बहुत मुश्किल हो जाती है। तो वहां एक समस्या खड़ी हो गई कि अंधेरे में इस जंगल के अंदर अगर एम्बुश हो गए हैं तो कैसे सपोर्ट देनी है, कहाँ निकल गया है ये आगे। बहरहाल करीब 1-1.5 घंटे बाद वो पार्टी वापस आई और उन्होंने बोला कि साहब कुछ नागा ऊपर से नीचे आ रहे थे, तो दोनों पार्टियों के बीच में मुठभेड़ हो गई, फायर खुला, अभी पता नहीं कहाँ भाग गए। पूरी रात बैठे हम वहां पे और इतनी इतनी भयानक रात कमी काटी है मैंने कि पूरी रात वो ट्रेल ट्रैक छोटा पतला सा ट्रैक था, पैर हमारे लटके हुए थे, नीचे नाला बह रहा था और करीब ऊंचे आप 60-70 लोग ऐसे ही बैठे हुए हैं हथियार के साथ, सुबह से चल रहे थे, कोई खाना नहीं, पानी तो बह रहा है लेकिन आप पानी पीजिए ना, 9:30 में अगर नाले का तो आपका पेट हमेशा के लिए खराब रहेगा। आधे लोगों का हमारा इसीलिए प्रॉब्लम हो गई समझ के साथ, बिकॉज इतना गंदा वो पानी होता था और रात भर कीड़े चूहे सांप पता नहीं क्या क्या निकल रहे थे अंधेरे में।
खतरों के बीच रात गुजारी, सुबह हुई, बॉर्डर पर पहुंचे तो वहां नगा की एक झोपड़ी मिली जिस पर प्लास्टिक शीट पड़ी थी। खतरा सिर पर मंडरा रहा था, अलर्ट अब भी मिल रहा था कि मिलिटेंट की तरफ से गोली चलने वाली है। इन हालातों में घने जंगलों के बीच नगा तक पहुंचना आसान नहीं था, फौजियों को रास्ता पता नहीं था, कैप्टन को भी इसकी खबर नहीं थी। तब उन्हें पेड़ पर लटका दिखा प्लास्टिक का पैकेट जो मौत का न्योता दे रहा था, कैप्टन उसको छूने जाते उससे पहले ही नगा लड़के ने रोक लिया।
मैं नॉर्थ ईस्ट में रहा, मैं श्रीलंका में मैंने तमिल टाइगर्स के कैंप हिट करे, मैं कश्मीर में मैंने मुजाहिदीनों के कैंप जंगलों में हिट करे, लेकिन नागा ऐसी फौज थी और इतने सालों से जंगलों में और हिंदुस्तान की फौज के साथ ये लड़ रहे थे कि आप नागा कैंप को हिट नहीं कर सकते जब तक आपके पास कोई लोकल नागा मिलिटेंट नहीं हो जो आपको उस जगह तक ले जाए, क्योंकि कोई भी पाथ जो जंगल में उनका कैंप होता है कोई भी उसका कोई रास्ता नहीं होता। नागा इंसर्जेंट जो है वो खुद गेम ट्रेल को यूज करता है, जो जानवर ट्रेल यूज करता है वो उसी को यूज करते हैं, और पेड़ के नीचे वो हल्का सा निशान एक धाका मारेंगे जो उन्हीं के लोग पहचानेंगे। तो इसके रास्ते के लिए ही हमें पहुंचने के लिए ही 2 किलोमीटर हम नदी में चले, नदी वो मतलब जो पहाड़ की चलती है पतली नदी, क्योंकि उस गाइड ने बोला कि कोई रास्ता नहीं है, यही रास्ता है, पानी में ही चलना पड़ेगा आपको करीब 2 किलोमीटर के बाद। और फिर वहां से निकाल के उसने दिखाना शुरू करा, ये देखो पेड़ के नीचे एक धाका निशान दिख रहा है, ऊपर देखो हल्की सी डंडी टूटी हुई है, यही रास्ता है, कोई रास्ता नहीं। तो वहां पे भी वो बिल्कुल छुपा हुआ एक उसका वो हट मिली, वहां पे रेस्ट हुआ हमारा। उसके बाद 3-4 किलोमीटर और अंदर गए हम, और जो गाइड था उसने थिक जंगल था उस पर था, नीचे नाला था, नाले के बाद आगे पहाड़ और दिख रहे थे, और आप सोचिए पूरा ट्रॉपिकल जंगल है, ग्रीन थिक जंगल। तो वो रोका उसने, नागानी लड़के ने, यंग लड़का था, उसने रोका और करीब 15 फीट पे मुझे एक प्लास्टिक का पैकेट दिखा पेड़ पे लटका हुआ है। अब इतने थिक जंगल में जहाँ कोई नहीं जाता वहां प्लास्टिक दिख रहा है, तो जैसे ही मैं बढ़ा आगे तो उसने हाथ पकड़ लिया मेरा, बोला अगर आपने प्लास्टिक छुआ या जिसने भी प्लास्टिक छुआ वो जिंदा वापस नहीं आएगा। प्लास्टिक पे जो कैंप की ऑटोमेटिक लाइट मशीन गन है वो मार्क्ड है, वो प्लास्टिक को मत छूना। और प्लास्टिक से 15 फीट जंगल के अंदर छाई में पेड़ों की उसने रोक दिया पूरे कॉलम को। जब रात को या दिन में जो आप अपनी ऑटोमेटिक साइट करते हैं ना, लाइट मशीन गन या MMG या मीडियम मशीन गन, तो आपको डिस्टेंस पता लगना चाहिए, आपको पता लगना चाहिए कि दुश्मन कब किलिंग जोन में आया। तो अगर वो कोई प्लास्टिक के आसपास आएगा तो जो सेंट्री देख रहा है उसका जो निशाना हथियार का है वो उसी प्लास्टिक पे लगा हुआ है, तो वो फायर खोलेगा और मतलब यकीनन उसको कुछ ना कुछ सक्सेस मिल जाएगा, क्योंकि उसको अपना निशाना लेने की जरूरत नहीं है, उसने लगा रखा है फिक्स करके उसको।
लड़के के हाथ पकड़ लेने से कैप्टन की जान बच गई, मगर अभी ऑपरेशन पूरा नहीं हुआ था, उस कैंप तक पहुंचना बाकी था जो कैंप नहीं पूरे ऐशो आराम का अड्डा था, जहां ऐसे खेल हो रहे थे कि जिसके बारे में अंदाजा लगाना कैप्टन के लिए भी मुश्किल था। नीचे नाला बह रहा था, ऊपर टीम बैठी है, कहीं कुछ नहीं दिख रहा है, आगे बढ़ें या नीचे उतरें किसी को कुछ नहीं समझ आ रहा है। तभी नाली के पास से लकड़ी काटने की आवाज आई, कौन काट रहा था लकड़ी, गोली चली तो टीम के साथ क्या हुआ, उस ट्रेनिंग कैंप में कौन मिला। इन सवालों का जवाब जानने के लिए इंतजार करिए पूर्वोत्तर में सर्जिकल स्ट्राइक की अगली कड़ी का। देश के जांबाजों के किस्से हम अपने खास पॉडकास्ट सीरीज शौर्य में आप तक ला रहे हैं। फिलहाल अपने दोस्त रोहित उपाध्याय को दीजिए इजाजत। ये है नव भारत गोल्ड की प्रस्तुति।